नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। ये भाषण भारत की तेजी से बढ़ती वैश्विक डिजिटल उपस्थिति पर केंद्रित होगा। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन होगा। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा की 5 दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले दिन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति बैतूल में आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि विकास की यात्रा में समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे।
2047 विकसित भारत बनाने के लिए हम सोचे हैं। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, ये देश एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। राष्ट्र पुरुष का प्रत्येक अंग हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक अक्षत होना चाहिए, क्षति नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई भी अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिनों का समय मिल गया है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा। वहीं ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों के लिए सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के अंतर्गत संघर्ष विराम में लेबनान भी शामिल है। इससे इसराइल और हिजबुल्ला से जुड़े सीमा पार तनाव कम हो सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरिंग ने 1 गोल दागा। उरुग्वे की चियारा एम्पेनिनो और मैनुएला विलार ने गोल किए। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।